ओम शांति। आज कौन सी तारीख है? 12 मई। कुछ विशेष? जगदीश भाई का यादगार दिन। भारत में यज्ञ आने के बाद इस यज्ञ के प्रथम समर्पित कुमार 1952। वही प्रथम समर्पितों में, उसमें से भी कुमारों में भी प्रथम, जिसे बाप दादा ने संजय नाम दिया, सच्चे सच्चे दधीची का नाम दिया। असंख्य किताबें लिखी अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, और हमारे जो विश्वविद्यालय की 3 मुख्य पत्रिकाएं हैं, वर्ल्ड रिन्यूअल, प्यूरिटी और ज्ञानामृत के प्रधान संपादक। तो मैं सोच रहा था कि इस किताब में कुछ उनका अनुभव जो आया है बाबा के साथ वो पढ़ा जाए। वो दिन कितने प्यारे थे, ये जगदीश भाई के अनुभव यहाँ वो लिख रहे हैं, 12 मई 2001 में मधुबन की पवित्र भूमि पर अपना पार्थिव देह का त्याग किया। मुल्तान में उनका जन्म हुआ था 1929 में। तो जगदीश भाई के अनुभव बाबा के साथ, वो दिन कितने प्यारे थे। मैं यह समझता हूं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। कई दफा गदगद हो जाता है मन, रात को नींद टूट जाती है। वो मूरत मम्मा की और बाबा की सामने आ जाती है। सृष्टि के आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा, सारी सृष्टि के प्रथम, जिसको सब धर्म वाले भी आदि पिता मानते हैं, उसके अंग संग रहने का मौका मुझे मिला। उन्होंने अपने हाथों से प्यार और दुलार किया, अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाया, बच्चों की तरह से प्यार किया। वो दिन कैसे थे। बाबा तो कहते हैं कि बच्चे मैंने बाहें पसार रखी है, अव्यक्त स्वरूप में मुझसे मिलो। अव्यक्त स्वरूप से मिलती है संदेश पुत्रिया, गुलजार बहन जैसे बहनों को दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होता है। सेमी ट्रांस में तो हम भी जाते हैं, लेकिन वो नजारे कुछ और थे। आपसे सच कहता हूँ, वो नजारे कुछ और थे। वो क्या देखा हमने, बार बार याद आता है वो कैसे प्यारे नजारे थे। बाबा के ट्रांसलाइट तो हम देखते हैं, बाबा के चित्र हरेक कमरे में लगे रहते हैं, और आजकल कला का विकास हुआ है, अच्छे अच्छे चित्र बनते हैं, कैमरे भी अच्छे अच्छे आ गए हैं। उनमें फोटो का रंग हल्का तेज जैसा चाहे कर सकते हैं, लेकिन जो बाबा को हमने देखा, जो दृष्टि उनसे ली, वो भूलता नहीं है। योग में बाबा हमारे सामने बैठते हैं, हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा हमको दृष्टि दे रहे। सचमुच ऐसा लगता है कि हम सागर के नीचे उतर रहे हैं। ऐसा अनुभव कौन कराएगा, फिर कब होगा? क्या ड्रामा के वो दिन हमेशा के लिए चले गए हैं? वो फिर नहीं आएंगे क्या? फिर 5000 वर्ष के बाद ही आएंगे क्या? मन कई दफा रोने को आता है, आंखों से आंसू आने को होते हैं, संभाल लेते हैं, चुप हो जाते हैं। ऐसे नहीं हम बाबा से बिछड़ गए, बाबा तो हमारे साथ है। बाबा भी कहते हैं मैं आपके साथ हूँ, लेकिन वो जो दिन थे वो तो बहुत ही प्यारे दिन थे। वो प्यार और दुलार जो बाबा ने दिया, उसके मुकाबले और कुछ भी नहीं है। 2.5 फुट की एक छोटी सी टेबल होगी जिस पर बाबा खाना खाते थे अपने कमरे में। उस कमरे में बाबा की कुर्सी होती थी, सामने हमें बिठा लेते, कहते बच्चे आओ खाना खाओ। बाबा चावल खा रहे हैं, चावल में मूंग की दाल मिली हुई है, खिचड़ी बनी हुई है, उसमें पापड़ को तोड़कर मिलाकर अपने हाथ से खिला रहे हैं। वो दिन भूल नहीं सकते। बाबा देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। लोग मानते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, इतना तो मालूम है, लेकिन क्यों सृष्टि रची, कैसे रची, रचना की विधि क्या थी, वो नहीं मालूम। लोग सोचते हैं कि हमारे शरीर के कान, आंख, नाक जो है, इस ब्रह्मा जी ने बनाया। कबीर जी यह कहते हैं कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा, आपने हमारी आंख ऐसे क्यों बनाई जो झपकती है? अखिया तो छाई पड़ी पथ निहार निहार। कहता है, आंख तो मेरी बिछी हुई है उस पिया के मार्ग में, उसकी याद में, उसको देखने में लगी हुई है। मन कहता है, करता है कि आंख झपके नहीं, अपलक होकर देखता रहो। बाबा ने शरीर छोड़ा, अव्यक्त हुए। जहाँ शांति स्तंभ है वहां पर दाह संस्कार हो रहा था, शरीर को अग्नि समर्पित की जा रही थी। मैं खड़ा था। एक वो दिन था जब बाप की गोद में जाता था, कम से कम 100 से 150 दफा बाबा की गोद में गया हुआ होगा। बाबा ने गले से लगाया, गालों को थपथपाया, सिर पर हाथ फिराकर प्यार किया और इतना दुलार किया। आज वो शरीर जो एक चुंबक की तरह था समाप्त हो गया, समाप्त हो जाएगा। क्या उसके द्वारा फिर मिलन हो सकता है? जब बाप हाथ लगाते थे, स्पर्श करते माथे पर, सिर पर, तब ऐसे लगता था कि हम मालामाल हो गए। हमें और क्या चाहिए? वो अनुभव फिर कैसे होगा? अभी उन हाथ, पाव, पूरे शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा। बस पूरा हो गया वह साकार का पाठ। मैं आपको सच कहता हूँ, उस समय मन में संकल्प आया कि क्या संकल्प आया? कि बाबा के साथ मैं भी लेट जाऊं। अब अपने इस शरीर को रखने का क्या कोई उद्देश्य नहीं? जब बाबा जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ जाऊं, ऐसा मन करता था। फिर मन को ब्रेक लगा था कि दुनिया कहेगी यह तो पागल है, यह क्या करता है, एक खेल में दूसरा खेल हो जाएगा, ये सारे दृश्य कैसे भूल जाए। कुछ स्थितियों में यह भी अनुभव किया कि बाबा ने अपने साथ भी लिटा लिया अपनी शैया पर, अपने कमरे में जहाँ अब भी एक चारपाई है। उस चारपाई पर मैं उसको कभी जाकर चूम लेता। यह तो चारपाई है जहाँ पर बाबा लेटे रहते थे, मुझे भी साथ में लिटाया हुआ। कुछ सुना रहे हैं, कुछ पूछ रहे, दृष्टि दे रहे, प्यार कर रहे, ये सारे दृश्य कैसे भूल जाए। वो जो दिन थे, वो जो लोग थे, उनकी क्या बात थी। बाबा ने किसी को स्पर्श किया तो उनको ऐसा लगता था ये विकार हमेशा के लिए मेरे मन से को छोड़ गए। इतनी शीतलता थी, जैसे कहते हैं ना, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरों को शीतल कर दे, दे दे अपना रंग। ओहो, मम्मा की गोद में हम जाते थे। कितने लोग अपना अनुभव सुनाते हैं। सिर्फ यह मेरा ही अनुभव नहीं कि जब मम्मा की गोद में हम गए, मुझे सुध-बुध नहीं रहा। हम कहाँ थे उस समय, वे कौन मम्मा थी जो हमें इतना प्यार कर रही थी। वो जगत की अम्मा सरस्वती मैया, जिसको भक्त जन्म जन्मांतर याद करते थे, जिसको विद्या की देवी मानकर उससे विद्या मांगते थे, शीतलता के लिए शीतला देवी के रूप में उसका गायन करते थे, उस संतोषी माता की गोद में हम थे। उसने हमारे सब पाप हर लिया, लिए हमें कितना शीतल कर दिया कि अब हमारे मन में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमको बहुत सहज लगा पुरुषार्थ करना मम्मा और बाबा के संग में। बाबा कितने गुप्त रहे, अपने को कभी प्रत्यक्ष नहीं कराया। हम भगवान के बच्चे हैं, उसके हाथों से पालना ली, लेकिन सच में मैं बताऊं कि बाबा कितना गुप्त रहे, अपने को कभी प्रत्यक्ष नहीं कराया, हमेशा मम्मा को आगे रखा। कितना मम्मा का सम्मान किया, जिस मम्मा को स्वयं ज्ञान देने के निमित्त बने। जब मम्मा किसी और शहर में जाती तो मम्मा बाबा उसको स्टेशन पर छोड़ने जाते, क्या जरूरत थी। हम बच्चे तो जाते ही थे, लेकिन बाबा स्वयं छोड़ने जाते। ईश्वरीय सेवा करके मम्मा जब वापस आती, उसका स्वागत करने जाते थे गेट के पास। अपने से छोटे जो अपनी ही रचना है, उनको भी बाबा कितना रिगार्ड देते, आगे रखते। बाबा हरेक को पहचानते, उनका ड्रामा में क्या पार्ट है इस बात को समझते। और कौन है जो इन बातों को समझता। मुझे अपना स्वयं का अनुभव है, बाबा ने मुझे समझा और पहचाना। किसने मुझे समझा और पहचाना? मैं क्या था दुनिया की निगाह में? मैं क्या था? ना कोई लेखक था, ना कोई धनी था, ना कोई गणमान्य व्यक्ति था, ना कोई मशहूर आदमी था, कुछ भी नहीं था। लेकिन भविष्य बनाने वाले और सबके पाठ को जानने वाले तो बाबा ही है। बाबा ने किन किन बच्चों को पहचान कर उनको क्या क्या पाठ दिया और क्या क्या उनसे करवाया, आश्चर्य लगता है। वे ऐसे संस्मरण है जो अनमोल है। जब कभी वो दिन याद आते हैं, रह रह कर याद आते हैं, तो फिर वो दृश्य, वो बातें सामने आती है, वो सारी फिल्म मन में सामने घूमने लगती है। वो ऐसे संस्मरण है जो अनमोल है। उनके मुकाबले मैं और कुछ नहीं। हम जब वो सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ हैं। आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोगों के साथ ही शरीर छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं और वे बुजुर्ग युवाओं के बीच रहने लगते हैं। उनको यह तो अनुभव होता है कि ये जवान है, उत्साहशील है, उनको देखकर खुशी तो होती है, लेकिन साथ साथ ऐसा भी महसूस होता है कि हमारे जमाने के लोग तो चले गए, वो अब नहीं रहे। ऐसा फर्क तो पड़ता है। उन दिनों में पुराने लगभग वही भाई बहने थे जो ओम मंडली में आए थे, परिवार समर्पित हुए। अजीब रिश्ते नाते यज्ञ में एक सौभाग्य मुझे मिला उन सब से मिलने का। बाबा की जो लौकिक पत्नी थी उसके साथ बैठते हमने बाबा की सारी बातें सुनी। बाबा की जो लौकिक बहू ब्रजेंद्र दादी थी उनसे भी सुना। बाबा की लौकिक बच्ची निर्मल शांता से भी सुना। बाबा की एक लौकिक बहन थी वो भी वहां रहती थी। मम्मा की लौकिक माँ भी वहां रहती थी। सबसे मैं मिला। मम्मा की लौकिक माँ भोग लगाती थी। मुझे यही आश्चर्य हुआ जब पहली बार मैं वहां गया। मम्मा की माँ भी मम्मा को माँ कहती थी, माँ अपनी बेटी को माँ कहती थी। मुझे अजीब सा लगा, आश्चर्य लगा कि यह क्या बात है। यहाँ तो सब आत्मिक नाते से, ज्ञान के नाते से रहते हैं और व्यवहार करते हैं, शरीर का नाता तो है ही नहीं। एक अजीब बात देखने में आई कि बाबा की जो धर्म पत्नी है वह भी बाबा को बाबा कहती है। अज्ञान काल में जिसको पति के रूप में देखा करती थी उसको बाबा कहती थी। सिर्फ कहने में नहीं, उसके व्यवहार में, उसके चलन में यही अनुभव होता था कि बाबा को बाबा समझकर चलती है। यह सब देखने का था। धीरे धीरे वह सब चले गए, नए नए लोग आते गए और काफिला बढ़ता गया। और कितना बड़ा काफिला अब हो गया। अब शांतिवन में जाए, ज्ञान सरोवर में जाए, पांडव भवन में जाए, विश्व भर के सेवा केंद्रों पर जाए, कितना काफिला बढ़ गया। बाबा के बच्चे कितने हो गए, वे सब तो हो गए, लेकिन जो बाबा मम्मा दादिया और बड़े भाइयों के साथ दिन गुजारे वो तो फिर नहीं आएंगे। हम तो उनकी याद आती है, हमें तो उनकी याद आती है। पत्र पढ़कर मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे ज्ञान में चलते हुए थोड़े ही दिन हुए थे, 2-1.5 महीने ही हुए थे। बाबा का पत्र आया, लाल अक्षरों में सिंधी में लिखा हुआ। सिंधी में पढ़ लेता था क्योंकि उर्दू जानता था। उर्दू और सिंधी की लिपि एक ही होती है। थोड़ी मेहनत की जाए तो सिंधी भाषा को समझ सकते हैं। पत्र में बाबा ने लिखा हुआ था, क्या लिखा था? चिमन भाई को सब पता है। बच्चे क्या इस बूढ़े बाप की मदद नहीं लेंगे? इस नई सृष्टि की स्थापना में इस बूढ़े बाप को मदद नहीं दोगे? पढ़कर जमीन मेरे पाँव के नीचे से खिसक गई। मुझे ऐसे लगा कि यह कौन कह रहा है। सृष्टि का आदि पिता जिसमें स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा आता है और दोनों करण करावन हार है, हम मनुष्य क्या है उनके आगे। मैं आपको सही कहता हूँ कि अभी तो योग लगाना सीख रहा था। बाबा की वो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते ही लोग योग में था, लाइट में था। मैं खड़ा हुआ हूँ या बैठा हूँ, मेरे हाथ में चिट्ठी है या नहीं है ये पता ही नहीं था। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं प्रकाश में हूँ। ये कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, यह कितना नम्र चित्त है। सृष्टि स्थापना के लिए कैसे किसको निमित्त बनाता है। उस समय इतना अधिक सोचा ही नहीं था, शायद आज इतना सोच रहा हूँ या बाद में सोचा होगा, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा मैं लाइट स्वरूप हूँ और माइट स्वरूप हूँ। पहले इस तरह की योग की कमेंट्री नहीं होती थी। योग के लिए ऐसा नहीं था कि कुछ विधि पूर्वक एक हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन आपको अधिक स्पष्ट किया जाए। प्यार बाबा का ऐसा था, बाबा का परिचय ऐसा था, उससे स्वयं से देह से न्यारे हो जाते थे और महसूस करते थे कि हम तो योग में ही हैं, आनंद में हैं, शांति में डूबे हैं। यह संसार हमसे ओझल हो गया है, हम किसी नई दुनिया में, जो प्रकाश की दुनिया है, वहां जा रहे हैं। नारायण से बड़ा कौन, चिमन भाई उस दिन बता रहे थे ना। एक बार बाबा आए क्लास कराने, तो प्रश्न किया बच्चों से कि हमारा क्या लक्ष्य है, बाबा हमें कितना उच्च पद देते हैं, इससे और ऊंचा पद कोई होता है क्या। क्लास में एक भाई बैठा था, वो बाबा को बाबा का दूर के संबंध का पोता लगता था, वो थोड़ा मजाकिया व्यक्ति था, बाबा को लौकिक दादा समझकर प्यार करता था। उसने हाथ उठाया, बाबा ने पूछा, हाँ बच्चा, बच्चे कुछ कहना है। उसने कहा, लक्ष्मी नारायण से बड़े और भी होते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा वो कौन। उसने कहा, देखिए जो नारायण है वो बाल कटाता है तो सर झुकाता है ना नाई के आगे, तो बड़ा नाई हुआ जिसके आगे नारायण भी सर झुकाता है, कहता है मैं हजाम बनूंगा। हजाम तो नारायण से भी बड़ा है, लेकिन क्योंकि नारायण को तो उसके सामने माथा टेकना पड़ता है, सब खूब हंस पड़े, बाबा भी हंसे। ऐसे समय प्रति समय बाबा हंसा भी देते थे और प्यार भी करते थे। बाबा हम बच्चों को हंसते हंसते ज्ञान देते थे, वो दिन कितने प्यारे थे और न्यारे थे। किस डॉक्टर की बात सुनो, एक बार बाबा को शुगर की मात्रा बहुत बढ़ गई और ब्लड प्रेशर भी था। डॉक्टर ने कहा, बाबा बहुत जल्दी उठते हैं, दिन में रेस्ट भी करते नहीं है, आप इनको रेस्ट दिया करो, इनको रेस्ट लेने के लिए कहो। मुझे याद है उस समय मैं मधुबन में ही था, दीदी मनमोहिनी जी और दो चार भाई बहनों ने मिलकर बाबा से कहा, बाबा आप अमृत वेले योग में न आइए, आप तो रात को देरी से सोते और विश्व सेवा के बारे में सोचते रहते हैं, जब भी हम आपके कमरे में जाते हैं आप जागते रहते हैं, आप दिन रात योग तो लगाते ही हो, इसलिए थोड़े दिन के लिए कुछ कृपया सुबह अमृत वेले योग में मत आइए। बाबा ने कहा, बच्ची तुम क्या कहती हो, अमृत वेले ना उठू, ये कैसे हो सकता है, जब ऑलमाइटी बाबा ने हमारे लिए समय दे रखा है उसको कैसे छोड़ू। उन्होंने बाबा से फिर बहुत विनती की कि बाबा डॉक्टर कहते हैं आपको विश्राम लेना बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा, बच्ची मैं किस डॉक्टर की बात सुनूं, यह डॉक्टर कहता है अमृत वेले रेस्ट करो, वो सुप्रीम डॉक्टर कहता है अमृत वेले उठकर मुझे याद करो, मैं किसकी बात मानूं, मुझे सुप्रीम डॉक्टर की बात ही माननी पड़ेगी ना, इसलिए मैं अमृत वेले रेस्ट नहीं कर सकता। ऐसा कहकर बाबा ने उनकी बात को इनकार कर दिया। दीदी जी ने नहीं माना, उन्होंने कहा कि बाबा डॉक्टर ने बहुत कहा है, इसलिए आप कम से कम 2-3 दिन मत आओ, हमारी यह बात आपको माननी ही पड़ेगी। बहुत जिद करने के बाद बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची सोचूंगा। जब रोज के मुआफिक हम अमृत वेले जाकर योग में बैठे तो बाबा भी चुपके से आकर योग में बैठ गए। देखिए बाबा ने अपनी जिंदगी में एक दिन भी अमृत वेले का योग मिस नहीं किया। कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी उम्र हो, उन्होंने ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन दिनों कितने सेवा केंद्र थे, मुश्किल से 10-15। जब मैं ज्ञान में आया था कोई भी सेंटर नहीं था सिवाय दिल्ली कमला नगर के। पहला जो सेंटर खुला विश्व भर में वो कमला नगर सेंटर था, जहां हम रहते थे। दादी जानकी वहां रहती थी, मनोहर दादी भी रहती थी, दीदी मनमोहिनी दीप जी भी वहां रहती थी, इकट्ठे हम सब रहते थे। छोटी सी जगह थी लेकिन हम इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते पीते थे, इकट्ठा सेवा करते थे, वो कितने अच्छे दिन थे। तब ये सब दादियों के साथ, तब से इन दादियों के साथ हमारा संबंध है। सन 1951 में जब हम सेवा में आए, सन 1951 में हम सेवा में आए, सन 52 में हम भी यहाँ आए। सेवा तो लगभग इकट्ठा शुरू की, इससे पहले ये कराची या हैदराबाद में रहे। अगर अपनी कहानी सुनाऊं, हैदराबाद भी गया था, अगर मेरी सारी कहानी बताऊं सुनाऊं, वहां भी मैं गया। मैं पढ़ता था कॉलेज में और बहुत मन में था, हे भगवान आपसे मिलन कब होगा, मेरे जीवन की यही इच्छा है। मैं तो भटक रहा हूँ दुनिया में, जैसे किसी को कोई कमरे में बंद कर दिया। मैं अपने को समझता था कि इस संसार में किसी ने मुझे जेल में बंद कर दिया है, मुझे निकालते क्यों नहीं। रोता था कई दफा। एक दफा जब बहुत तीव्रता से चला गया था तो अंदर संकल्प आया कि हैदराबाद सिंध की तरफ जाऊं, कराची की तरफ जाऊं। मैं हैदराबाद सिंध की तरफ चल पड़ा। वहां पर सफेद कपड़ों वाली बहनों को देखा। वहां वैसे भी बहुत सारी सिंधी बहनें पैजामा और कुर्ता जैसे बहुत कुछ सफेद पहनती थी। उनको मैंने देखा, कुछ झलक जैसी लगी लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, कुछ स्पष्ट बताया तो नहीं था। यह तो जैसे टचिंग हुई थी, उस टचिंग की वजह से मैं वहां गया था। 3-4 दिन तक बिना बताए घर से मैं भाग गया, इस ख्याल से कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। घर वाले मुझे ढूंढते रहे, वहां मुझे कुछ नहीं मिला, देखकर वापस आ गया। वापस आने के बाद राजनीति शास्त्र की कुछ किताबें पढ़ी तो उसमें जानकारी मिली कि सिंध में ओम मंडली थी, सरकार ने यह किया वह किया। मैंने फिर लोगों से पूछना शुरू किया कि ओम मंडली क्या थी, सरकार ने ऐसा क्यों किया, इत्यादि इत्यादि। लोगों को पूरा पता नहीं था। खैर जो भी हुआ, बहुत लंबी दास्तान है। उसके बाद तो मैं ज्ञान में आ गया। बाबा ने ज्ञान के बहुत साक्षात्कार कराए। जिगर से कहता हूँ, बाबा ने जो प्यार इस आत्मा को दिया वो शायद ही किसी किसी को प्राप्त हुआ हो। बाबा ने ज्ञान के बहुत साक्षात्कार कराए, ज्ञान के बहुत साक्षात्कार कराए, ज्ञान के भी साक्षात्कार होते थे। जैसे दिव्य दृष्टि से हम कई चीजें देखते हैं, वैसे ही दिव्य बुद्धि से भी बहुत से साक्षात्कार होते। हाँ, इस आत्मा को कितनी ही बार वो साक्षात्कार समय समय पर हुए। बाप दादा ने जो वरदान दिए और उनके साथ जो हमने क्षण घंटे दिन वर्ष गुजारे वे अविस्मरणीय। कई बार लगता है उसका वर्णन करे तो उससे बाबा की ही प्रत्यक्षता है। कई बार ऐसा ही लगता है कि उनमें व्यक्तिगत बातें भी है, फिर मन में एक रुकावट आती है कि उनको लिखने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन वो यादें तो आती है कि किस तरह बाबा ने हमें अकेले में बिठाकर काफी काफी समय तक योग का अभ्यास कराया। साहित्य की वजह से उनसे ज्ञान के विषय में जब चर्चा होती थी तो ज्ञान की गहराई में जाने का भी मौका मिलता था। जब कोई बात लिखकर उनके सामने ले आते थे, कई शब्दों पर किस प्रकार चर्चा होती थी, सर्विस के बारे में बाबा क्या इशारे देते थे, कौन कौन सी मुख्य बातें मुख्य रूप से उनके सामने रहती थी, जब हम खेलते थे तब कैसे बाबा का रूप रहता था, ये सब विभिन्न चरित्र है बाबा के। कुछ भाई लोगों से एक प्रश्न पूछा, जो शरीर से पुरुष है उन्हें कैसे भगवान के साथ सजनी के संबंध का अनुभव हो सकता है। हो सकता है इस आत्मा को भगवान के साथ सर्व संबंध अनुभव करने का सौभाग्य मिला, माता के साथ, पिता के साथ, सखा के साथ, जो उसके साथ सर्व संबंध गाए गए हैं, उन सबका आध्यात्मिक रूप से अनुभव करने का मौका मिला। एक दफा नहीं, कई दफा। गीता पढ़ते हैं तो अंत में आता है, इस ज्ञान को पुनः पुनः स्मरण करके मेरा मन गदगद होता है। तो वो अनुभव भी जब पुनः पुनः हमारे सामने आते हैं तो मन गदगद होता है। बहुत बड़ा है। वो मेरा सिकिलदा पिता है, सिकिलदी माँ है। मैंने भक्ति मार्ग के माध्यम से परमात्मा को खोजने के लिए जो मेरे से हो सकता था किया। मैं हर दिन प्रातः 2 बजे उठकर नहा धोकर भक्ति किया करता था। शायद ही किसी धर्म का कोई शास्त्र हो जो मैंने ना पढ़ा हो, शायद ही किसी धर्म का कोई प्रमुख नेता हो जिसके साथ मैंने वार्तालाप ना किया हो। किसी भी प्रकार की कोई भी साधना किसी ने बताई, हठ योग, तंत्र, मंत्र, यज्ञ, हवन, माला, जप, तीर्थ यात्रा, वेद, पुराण, शास्त्र, चर्च, मस्जिद, कोई भी बात ऐसी नहीं जो हमने ना की हो। एक खोज थी, कसक थी, कि इस जीवन में परमात्मा को पाना है। बहुत बार टचिंग हुई, थोड़ा थोड़ा अनुभव भी हुआ। घर वालों को बिना बताए मैं हैदराबाद भी गया, इसलिए कि कोई मुझे खींच रहा था। मैं ओम मंडली की चर्चा अपने बड़े भाई से करने की कोशिश की। जगदीश भाई के परिवार के बारे में कुछ किसी को पता नहीं चाहिए? बड़े भाई, माता पिता, अच्छा माता पिता, ऐसा अनुभव बहुत हुआ कि बाबा हमें खींच रहा है, हमारी तैयारी कर रहा है किसी विशेष सेवा के लिए। स्पष्ट पता नहीं था, जैसे बाबा कहता है मेरे सिकिलदे बच्चे, मेरे भी जिगर से निकलता था सिकिलदे बाबा। मैंने भी उनको बहुत सिख से पाया है, कितनी मेहनत मुझे शिव बाबा को प्राप्त करने के लिए करनी पड़ी। मेरे जिगर से निकलता है वो मेरा सिकिलदा पिता है, सिकिलदी माँ है, मुझ आत्मा के उनके साथ सर्व संबंध है। जब मैं आया बाबा का प्यार मुझसे कितना था, हालांकि कई पुराने भाई बहने थे परंतु वे भी जानते थे कि बाबा का मुझ पर कितना स्नेह था। बाबा का मुझ में जो विश्वास था या जो हमारा बाबा में था, मैं समझता हूँ कि वह भिन्न प्रकार का था। जब मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया तो यहाँ समर्पण की कोई परंपरा ही नहीं थी। सिंध में जो भाई बहने समर्पित हुए थे उस समय परिस्थितियां और थी, लोगों ने विरोध किया, उन पर अत्याचार हुए थे, उन्हें ज्ञान सुनने की इजाजत नहीं दी गई थी, उन पर बंधन डाले गए थे। इस वजह से कुछ भाई बहने समर्पित किए गए थे और बाबा ने कन्याओं को शिक्षा के लिए हॉस्टल बनाया था। मेरे समर्पण से नया सिलसिला शुरू हुआ। जब पहले पहले मैंने अपने को ऑफर किया कि जीवन का लक्ष्य मुझे मिल गया, मैं ईश्वरीय सेवा में समर्पित होना चाहता हूँ, तो मुझे भी कहा गया कि किस लिए समर्पित होना चाहते हो, तो मेरे समर्पण से नया सिलसिला शुरू हुआ। इससे पहले भाई बहनों के समर्पण की का कोई प्रावधान नहीं था। फिर बाबा ने ही बहुत प्यार से मुझे उठाया, सर्विस दी, दिशा निर्देश दिए। हर पोस्ट में तीन तीन पत्र आते थे। उन दिनों मैं दिल्ली में था, वहां तीन पोस्ट आती थी, हर पोस्ट में मुझे तीन तीन पत्र आते थे। एक पत्र लिखकर बाबा जब लिफाफा बंद करा देते तो यीशु बहन जो कहती फिर चिट्ठी लिखनी है, इसके बाद तीसरी भी लिखाते थे। एक पोस्ट में तीन पत्र आते थे, इस प्रकार तीन बार की पोस्ट में आठ आठ या नौ नौ पत्र हमें आते थे। ऐसा प्यार मैंने बाबा का पाया। बाबा के साथ महीनों बैठकर ज्ञान की चर्चा करने का, योग का अभ्यास करने का तथा सेवा के दिशा निर्देश लेने का भी मौका मिला। बाबा कहते हैं जब भी आते हो शिव बाबा इसमें आता है। बहुतों को याद होगा जब मैं बाबा के पास जाता था बाबा सबको हटा देते थे, कहते थे जगदीश बच्चा आया है। बाबा कहते हैं जब तुम आते हो शिव बाबा इसमें आता है। जब बाबा ऐसे कहते मेरा भी ध्यान जाता था कि बाप दादा दोनों हैं। बाबा कहते आप डायरेक्शन लेने आते हो, ज्ञान की कोई चर्चा करने आते हो तो उसको बताने के लिए शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करता है। मैं भी उसी स्थिति में बाबा के सामने बैठता कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में है और उस अव्यक्त स्थिति में, फरिश्ता स्थिति में बाप दादा मेरे सामने है। हम दोनों लाइट से घिरे हुए हैं और मन की ऊंची स्टेज है। योग जैसी अवस्था में बैठकर हम बातें करते, कोई आता जाता उसका भान नहीं रहता। बाबा बहुत गदगद, मन बहुत गदगद रहता, खुशी होती कि जो हमने मेहनत की है उसका बाप दादा ने हमको फल दिया, हमारे पर उसकी अतिरिक्त कृपा है। निमित्त बनने से आत्मा का सौभाग्य बन जाता है। मुझे भरतपुर तथा कोटा हाउस में रहने का भी मौका मिला। मैं अकेले रहता था, बाबा ने मुझे अकेली जगह दी हुई थी, इसका मंथन का कार्य है और इसके साथ कोई और नहीं रहना चाहिए। इस बच्चे का कमरा अकेला हो, जगह भी अकेली हो। कई बार तो बाबा कहते देखो उधर पहाड़ियों में गुफा है, तुम वहां चले जाया करो। दोपहर शाम को मैं कई बार चला भी जाता। मैंने पहाड़ी का भी बहुत अच्छा लाभ लिया। बाबा ने ज्ञान योग आदि सब तरह से बहुत कुछ दिया। इस आत्मा पर बाबा की छाप लगी हुई है। कठिन से कठिन समस्या आती थी जैसे कि झगड़ा, विरोध, सामना तो बाबा का पत्र या फोन का आदेश आता था कि जगदीश को भेज दो। क्या करने क्या करने सामना करने झगड़ा विरोध। बाबा का कितना विश्वास था, मदद तो बाबा की होती थी पर कराने वाले का नाम और कल्याण हो जाता था। करते तो बाबा है क्योंकि करण करावन हार तो वही है, पर निमित्त बनने से आत्मा का सौभाग्य बन जाता था। बाबा के साथ रहने का मुझे जो मौका मिला वो कोई कम नहीं था। एक ये बहने तो सेंटर पर चली जाती थी सेवा के लिए, मैं तो रहता ही बाबा के पास था। कहीं सेवा के लिए बाबा भेजते थे तो जाता था। उस समय बहुत थोड़ी सी सेवा थी, बहुत थोड़ी सी मुरलियां निकलती थी, वो हाथ से सिंधी में लिखी हुई होती थी। उन दिनों सिंधी जानने वाले ही वाली ही टीचर्स थी, वे ही सुनाती थी। उनकी मेरे ऊपर अनन्य प्यार, मेरा उनसे अनन्य प्यार था। मेरे ख्याल में शुरू शुरू में 10-12 साल तक कोई एक भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें बाबा ने मुझे याद ना किया हो, जगदीश बच्चे को याद ना किया हो। 10-15 साल तक लगातार। जो पुरानी बहने हैं उनको मालूम है, जैसे कुलजार दादी है, मनोहर दादी है, जानकी दादी है, ये पढ़ते थे मुरली, कहते थे बाबा ने इसको याद किया। बाबा से हम मिलने जाते तब कोई बहने बैठी हो, बाबा से बात कर रही हो, तो बाबा बहनों से कहती थी बच्चे आप सब जाओ, सबको भेज देते थे, फिर बाबा मेरे से बात करते थे। कई दफा इनको एतराज होता था कि बाबा यह क्या करते हैं, हम बात कर रहे हैं, हमको बाहर भेज दिया, अब इससे बात कर रहे हो, हंसी में कहती थी। बाबा कहते थे जब यह बच्चा आता है शिव बाबा मेरे में प्रवेश करता है, उसको कुछ डायरेक्शन देने होते हैं इसके लिए। अभी तुम जाओ, बेशक अभी इसको बात करने दो, ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। बाबा की ऐसी पालना मिली, रोम रोम में बाबा के कितने प्रीत थी। ऐसा महसूस होता था केवल मैं ही बाबा को याद नहीं करता, बाबा भी मुझे बहुत याद करते। मेरे साथ उनकी बहुत घनिष्ठता है, उनका मेरे से अनन्य प्यार है, मेरा उनसे अनन्य प्यार है। आज यही इसको पूरा कर दे, थोड़ा सा ये पढ़ ले, पूरा कर दे। पुरानी बहने हैं, बहुत पवित्र है। शुरू से मेरी यह इच्छा थी कि बाबा और मैं, तीसरा बीच में कोई नहीं, ऐसा मिलन हो। ऐसा मिलन होता ही रहा, ऐसा अनुभव किया। बाबा ने मुझे इतना प्यार किया ये योग लगाने में कोई कठिनाई। ये जो पुरानी बहने हैं ये बहुत पवित्र है, इसलिए उनमें कुदरती प्यार है ही, ये रहम दिल है, हरेक के प्रति इनकी बहुत शुभ भावना है। जब मैं आया मैं तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने ही पालना दी, उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया, मार्गदर्शन किया। स्वाभाविक है कि इनके लिए इनके उगाए हुए फूल हम हैं, तो ये हमारी रखवाली तो करेंगी, स्नेह तो देंगी। ऐसा हमारा जीवन का, मम्मा का, बाबा का और बड़े भाई बहनों के साथ व्यतीत हुआ। बहुत से लोग पूछते हैं कि योग कैसे लगाए। एक ही सूत्र फॉर्मूला है कि योग का ही प्यार करो, बाबा से तीव्रतम प्यार करो, बस यही योग है, तीव्रतम प्यार। प्यार में खो जाओ, यही संपूर्ण ज्ञान है। निरक्षरी भट्टाचार्य। बाबा भारत में एक फिल्म आई, कौन सी फिल्म? मैं चुप रहूंगी और अनपढ़, 62 में आई थी। उन दिनों दीवार पर लिखा जाता था फिल्मों का नाम। एक बहन जब दिल्ली से मधुबन आती तो उस फिल्म का नाम बाबा को बताती थी, कहती थी बाबा आजकल यह फिल्म आई हुई है। लेटेस्ट अपडेट्स। बाबा को फिल्म से क्या संबंध, यह तो विरोधात्मक वस्तु है। लेकिन बाबा फिर उस पर समझाते थे, आपने देखा होगा कि दुनिया के जो गीत है उसको भी बाबा ने कितना अच्छा आध्यात्मिक अर्थ बताया है। तो एक फिल्म आई थी अनपढ़, दूसरा थी मैं चुप रहूंगी। बाबा ने कहा मैं अनपढ़ हूँ, मैं चुप रहूंगी, ये तुम्हारे ऊपर लागू होती है। ये 62 की फिल्म है, ये फिल्म तुम्हारे कारण बनी हुई है, मीना कुमारी की फिल्म। बूढ़ी माता है और कुछ पढ़ नहीं सकती, गांव से आती है, निरक्षर भट्टाचार्य है। विद्यावाचस्पति। भट्टाचार्य का अर्थ है बड़े विद्वान, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, निरक्षर विद्यावाचस्पति। भट्टाचार्य अक्षर नहीं जानती थी लेकिन बड़ी विद्वान, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे बाप को जानती है। जब मैं ज्ञान में आया तब बाबा ने कहा, बच्चे की बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। मैं देखने लगा कि भूसा कहाँ भरा हुआ है, निकालो कैसे इसको। ऐसा भूसा होता है, एक भूसा होता है गाय भैंस को खिलाने के काम आता है। यह जो उल्टे ज्ञान वाला भूसा भरा है वो बिल्कुल फेंकने वाला भूसा है, यह गाय भैंस के काम भी नहीं आता है। यह सड़ा हुआ भूसा है, सड़ा हुआ भूसा गाय के आगे चारा बनाकर रख दो, वो सूंघने वो सूंघ के भूसा वो सूंघ के भूसा रहना मंजूर नहीं करती है लेकिन खाती नहीं है। हमारी बुद्धि में जो उल्टा ज्ञान फंसा हुआ है वह भूसा है जो सड़ा हुआ है। मैंने सोचा यह तो मुश्किल काम हो गया सड़े हुए भूसे को निकालने का। इस तरह बाबा की बातें बहुत अजीब और अनोखी थी। प्रेम की भी पीड़ा होती है, प्रेम पीड़ा, प्रेम विरह, बिछोह जिसको कहते हैं, विरह। विदेश में एक समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहन से मैंने पूछा, आप प्रेम गली में गुजरी हो? प्रेम गली अति सरकरी, जहाँ से दो ना जाए, क्या ऐसे है ना, दो ना समाए, जहाँ पे दो ना समाए, इतनी नैरो है ये पाथ कि जिसमें दो नहीं जा सकते। उसको इतना हिंदी नहीं आता था तो उसने समझा कि प्रेम गली कोई गली का नाम होगा। एक अन्य बहन से उसने पूछा, प्रेम गली कहाँ है? मैंने कहा, कोई बात नहीं, प्रेम गली का पता नहीं पता, प्रेम की पीड़ा, प्रेम का दर्द का अनुभव हुआ है? उसने पूछा, प्रेम का दर्द क्या होता है? पास में जो बहन थी उसने कहा, देखो मीरा का गीत है, मैं तो प्रेम दीवानी मोरो दर्द न जाने कोई। है ना प्रेम, है ना गीत मीरा का, प्रेम का दर्द होता है, प्रभु प्रेम की यह आग बुझाए ना बुझे। ये जो तीर लग गया, ये तीर लगने के बाद जो खून निकलना चालू होता है, कोई मलहम नहीं, बंद नहीं होता है, अनहीलेबल वुंड ऑफ डिवाइन लव। यह प्रेम की आग सताने वाली होती है, जिसको यह प्रेम की आग लग जाती है फिर यह नहीं बुझती। प्रभु प्रेम की आग सारी दुनियावी इच्छाओं को समाप्त कर देती है। आग चाहिए आग, प्रभु प्रेम की आग। वो दिखाए ना चैतन्य महाप्रभु एक दिन रात भर रोते रहे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, और पूरा उनका पलंग वो बेड पूरा आंसुओं से भीग गया। सुबह सुबह एक गृहस्थी आया और पूछता है कि महाराज मुझे बताइए भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है और भगवान को कैसे प्यार करना चाहिए। वो कहता है, मेरी ये दशा देखकर अगर तुम परमात्मा प्यार है ये समझ नहीं पाते हो तो मैं बताने के बाद क्या समझोगे। तो एक गीत में भी है, हे प्रभु आपका मुझसे जो प्यार है, आपसे मेरा जो प्यार है, उसको एक आप जानते हो और एक मैं जानता हूँ और न जाने कोई। आपको लगता है बाबा से मेरा प्यार ऐसा है? बाबा भी हमसे इतना प्यार करता है, हमारे बिना बाबा भी रह नहीं सकता है, बाबा को नींद नहीं आती है। भगवान नींद नहीं करता, क्यों? क्योंकि बच्चों से उसका इतना प्यार है, उसको याद करता है तो सताएगा तो सोएगा कैसा। यह एक बात भी हमारे ध्यान में आ जाए, प्यार, प्रभु का प्यार, उसका मुझसे प्यार, मेरा उससे प्यार, तो भी कल्याण हो जाए। अच्छा, ओम शांति।